ಕ್ಷಯಮುಪಾಗತಾಯಶ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾ ಹರೋ ಜಿನೋ ವಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ. ಜೋ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸಾಗರ ಸುದೀ ಜೋ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸಾಗರ ಸುದೀ ಗುರು ಹೇ ಹಿತೇಶಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮೇ ನಿರತ್ ನಿತ್ಯ ಹಿತೋಪದೇಶಿ ವೇ ಪಾಪ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಮೇ ಜಲ ಹೇ ಸಯಾನಿ ಪೂಜೂನ್ಹೇ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನಿ ಪೂಜೂನ್ಹೇ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನಿ. ಬೋಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂದುಕುಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ, ಹಮೇಶಾ ಕಿ ತರಹ ಆಜ್ ಭಿ ಅಪ್ನೆ ಜೀವನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಚ್ ಥೋಡಿ ಸಿ ಬಾತೇ ಅಪನ್ ಸೀಖೆಂಗೆ. ವೈಸೆ ಜೀವನ್ ರೋಜ್ ಹಮೇ ಕೋಯಿ ನಾ ಕೋಯಿ ಸಂದೇಶ ದೇ ಕರ್ಕೆ ಜಾತಾ ಹೈ, ಪರ್ ಹಮ್ ವೋ ಸಂದೇಶ ठीक से ले नहीं पाते हैं, क्योंकि ले भी लेते हैं तो उसे ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाते, भूल जाते हैं. मुझे लगता है हम लोग अज्ञानी कम हैं, ज्ञानी हैं पर भूले हुए लोग. कोई चाहिए हमें जो बार बार याद दिलाता, जिस चीज को याद करना चाहिए उसकी याद दिलाता रहे, जिसको वाकई भूल जाना चाहिए उसको हम भूल नहीं पाते. एक माँ अपने बेटे के दिल में बगीचे सौंप करके गई एक यात्रा पर, और बेटे को बता दिया था कि बगीचे की साफ संभाल करते रहना, एक यात्रा से अगर वापस लौटे तो देखेंगे. एक यात्रा से मैं वापिस लौटी तो देखा कि सारा बगीचा मुरझा गया, पृथ्वी के लगभग सीखने के. बेटे को बुलाया कि
कैसा किया तूने, सेवा नहीं की पौधों की? बेटे ने कहा कि बहुत सेवा की, तुमसे भी ज्यादा सेवा की है, पर पता नहीं कैसे ये मुरझा गए, सूख गए. मैं तो रोज सुबह से उठ करके देखो अम्मा, मैंने एक एक डाल को संभाला है, एक एक पत्ते को संभाला है, रोज मैं पहुंचता था उसको, सारी डालियों पर मैंने पानी सींचा है, पत्तों को भी गीला किया है, अब इसके बाद भी सूख गए हैं तो अम्मा तुम ही बताओ कि मैंने क्या गलती की है. अब ऐसे बेटे के लिए अम्मा क्या कहे. बात बेटे के समझ में नहीं आ पा रही है, शायद हम सबके भी समझ में नहीं आ पा रही है कि पत्तों को सींचने से, डालियों को सींचने से पेड़ हरा भरा नहीं होता, जीवन में इंद्रिय और मन के विषयों की पूर्ति करने से सुख नहीं मिलता. ये बहुत ऊपरी ऊपरी चीजें हैं जिनको कि हम कर लेते हैं, बहुत थोड़ी सी क्रियाएं कर लेते हैं.
देखो कि थोड़ा बहुत धर्म करते हो तो यही कहेगा कि अब देखो सवेरे से मंदिर भी गए थे और फिर तो स्वाध्याय भी थे और तो वचन का चल रही थी तो वो भी महाराज आए हैं जिनकी सुन रहे का कहा तो और हमसे ये सब ज्यादा कहा करें हम इतना तो कर रहे हैं कि वैसे हम सीख रहे हैं डालियां सीख रहे हैं पत्ते सीख रहे हैं और मेघाती चली जा रही जिंदगी ये भी हम सीख कर रहे हैं सीखना था जड़ें सीखना था जड़ों में पानी नहीं जा रहा है जितनी गहराई में हमारे इंद्रिय और मन की आकांक्षाएं बैठी हैं उतनी गहराई में हमारे जीवन के विकास के लिए उत्सुकता नहीं एक दिन खाना नहीं मिलता तो हम कह देते हैं कि चलेगा नहीं खाने के बिना घटना तेज देते हैं अब नहीं चला जाता क्या कभी जिंदगी में ऐसा लगा क्या अपने जीवन के विकास के लिए मैंने कुछ नहीं किया घटना तेज दिए हैं तो इतना स्वाभाविक हमारे जीवन में धर्म आया है जितना स्वाभाविक हमारे लिए रोटी पाना है जितना स्वाभाविक हमारे लिए पानी पाना है जितना सांस लेना हमारे लिए स्वाभाविक है क्या उतना हमारे जीवन में अपने आत्म विकास के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का मन होता है नहीं शायद यही बड़ी से बड़ी हमारी अपनी कमी रह जा रही है मैं हमेशा सोचता हूँ देखता रहता हूँ आपके जीवन को तो इतने ज्यादा नहीं देख पाते हैं अपने जीवन को कटोलता रहता है और देखता हूँ कि कहाँ कुछ है कहते जरूर हो बहुत सारी चीजें हम सब कहते हैं हम सब जानते हैं लेकिन आखिर बात क्या है कि उस जाने हुए को उस कहे हुए को हम ठीक ठीक जीवन में पा नहीं पाते जब दूसरे का जाना हुआ उधार दूसरे का कहा हुआ उधार हमारा अपना नहीं हो पाता बेटे को अडॉप्ट कर ले माँ लेकिन मातृत्व का अनुभव तो प्रसव की पीड़ा सहकर कोई पाया जाए अडॉप्ट करने से गोद लेने से शायद मास्टर से प्रकट नहीं होता किसी तरह धर्म प्रकट नहीं हो पा रहा हमारे जीवन में क्योंकि उधार है जहां वहां से इकट्ठा किया है या कि क्रियाओं में हमने बांध दिया है और अंतरंग में ये चीज उतर नहीं पा रहे अंतरंग तो हमारा निरंतर उसी चीजों में सुख मान रहा है इंद्र के विषयों में सुख मान रहा है या कि मन की मनमानी में सुख मान रहा है दोनों के अलावा कोई तीसरी आत्मा की भी स्थिति है जिन इस मन और शरीर के परे और इंद्रियों के परे है जो हम नहीं सोच पा रहे पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें इस बात का कि जब तक हम शरीर मन और इंद्रियों के परे नहीं उठेंगे थोड़ा सा उनसे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक जीवन में कोई सुख नहीं बरसने वाला इंद्रियों के बारे में तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना क्योंकि बेचारी बहुत कमजोर है आंख में कभी भी मैं तो इतना भी हो गए कभी मेरी आंखें आकर के ये नहीं कहा आंख आने की बात नहीं कर रहा हूं आंखें आकर के ये नहीं कहा कि तुम तो फलाने की देखो देखते क्या नहीं है इतने दिन हो गए हैं कभी सामने नहीं कहा कि तुमने कुछ अच्छा समय नहीं बहुत दिन से कभी बुद्धि ने भी नहीं कहा कभी स्पर्श इंद्रिय ने भी नहीं कहा किसी भी इंद्रिय ने भी तुम्हें आकर के कहा कि तुम मेरे विषय को क्यों नहीं जिताते हो कौन जिताने के लिए प्रेरित करता है वो मेरा मन है और इस मन के ऊपर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है और यही चीज है कि ये मन बहुत होशियार है चार बातें यहां वहां से सीख लेता है और सेटिस्फाई हो जाता है कि जानते तो हो सब बस इससे आगे नहीं बढ़ने देता ये तो मन ऐसा है ये तो बुद्धि ऐसी है कि खाना खा लिया पचाने की चिंता नहीं है बस खा लिया ना पेट भर गया पचेगा कि नहीं पचेगा इसकी चिंता मन को नहीं होती ऐसे ही शायद हमारे जीवन में मन के द्वारा किया जाने वाला धर्म आज बहुत दिखाई पड़ रहा है मैं बहुत अजीब सी बात कह रहा हूं आपसे कभी कहा होगा मैंने कि पूरे मन से धर्म करना चाहिए आज कह रहा हूं कि मन के द्वारा किया गया धर्म हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रहा है सिर्फ मन के स्तर पर किया गया पूरे मन से
कुछ अलग है। पूरे मन से यानी कि मन को पूरी तरह से मार करके किया गया धर्म, मन को जीत करके किया गया धर्म, उस धर्म की तो अभी हमें शुरुआत ही नहीं हुई है। जो मन को जीतने के लिए किया गया होता कृत्य जो धर्म, उससे तो आज तक हम कभी का मन को जीत लिए होते। यहां तो उल्टा ही है कि मैं अपने मन की कर पाऊंगा इसलिए मैं अपना अलग धर्म कर रहा हूं, अपने मन की करनी मन की मानने के लिए भी मैं धर्म करता हूं, अपने मन के अहंकार के पोषण के लिए भी मैं धर्म करता हूं, और इसलिए शायद मेरे जीवन का विकास नहीं हो पाता। ऐसा कभी आपने सोचा नहीं होगा शायद। मन क्या चीज है? हमारे भीतर उठने वाले संकल्प विकल्प के जाल को मन कहा है आचार्य भगवंतों ने। जब जब भी संकल्प विकल्प उठे वो सब मन का खेल है। हे और उपाधेय का विवेक जो करे वो मन है, और जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण करे वो भी मन है। ये तीनों स्थितियां मन की हैं, पर अधिकांश लोग हम सब मन के पहले स्तर पर ही जीते हैं, जहां हम संकल्प और विकल्प में खो है कि मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरा शरीर शुद्ध है, लेकिन कभी मैंने गौर किया कि मेरी मन शुद्धि क्या है? आज यही आकर के बात अटक रही है कि सब कुछ पवित्र हो सकता है, वाणी बहुत प्यारी हो सकती है, शरीर भी बहुत स्वच्छ हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि मन की शुद्धि कितनी है। मन अगर संकल्प विकल्प से युक्त है तो मन अपवित्र है। मन अगर हे और उपाधेय को जानता है तो थोड़ा सा उसमें शुद्धि आई है, और अगर वो हे को छोड़ने के लिए तत्पर है तो मानिएगा कि मन अब शुद्ध होने को है, हो ही रहा है शुद्ध। क्या ऐसी मन शुद्धि हम अपने जीवन में लाने की कोशिश नहीं करेंगे? ये कैसे आएगी? कह तो दिया मैंने कि मन शुद्धि आएगी, पर जैसे सागर में लहरें उठती हैं और उसी में समा जाती हैं, उठती भी उसी में उठी उसी में समा जाती, ऐसे तो ये हमारा जीवन है। इसमें लहरों की तरह मन में संकल्प विकल्प उठते हैं और उसी में समा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि समाए, एक लहर उठती है समाती है जब तक कई लहरों को जन्म दे देती है। ए स्टोन थ्रोन ऑन ए रिवर एट द मोमेंट दैट इज गॉन बट देयर आर 100 रिपल्स ऑन एंड ऑन। एक छोटा सा पत्थर गिरता है नदी के अंदर समुद्र के अंदर और थोड़ी देर में वो समा जाता है उसी में, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन देयर आर 100 रिपल्स ऑन एंड ऑन। पर उसके बाद एक के बाद एक, एक जरा सा संकल्प, एक जरा सा विकल्प कि मैं सुखी दुखी या कि मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, जरा सा संकल्प विकल्प उठता है और सैकड़ों लहरें उठना शुरू हो जाती हैं और पूरे आत्म स्वभाव को विचलित कर देती, पूरा सागर फिर सागर दिखाई नहीं पड़ता, लहरों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे हमारा जीवन संकल्प विकल्प से, तो क्या करें? इस संकल्प विकल्प को रोकने के लिए पहला उपाय मैं सोचता हूं, अगर बहुत कठिन उपाय है, ये इस मन को उठा करके किसी के चरणों में डाल दिया जाए। लेकिन ये भी कठिन उपाय है, कैसे डालें इस मन को किसी के चरणों में? मन तो कहता है कि ऐसे कैसे झुक गए तुम? अरे झुकने से तो उसकी बल निकलती है ना असल में इस मन की, तो वो दूसरा वाला उसके साथ जो जुड़ा हुआ है विचार, वो आकर के मन में कहता है कि ऐसे मत झुको, ऐसे झुकने से क्या होगा, तुम्हारी स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी। जब जब भी झुकने की बात आती है तो लगता है जैसे स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी, समर्पण की बात आती है तो लगता है कि स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस बात को मन में से निकालना होगा कि स्वाधीनता बढ़ जाती है, अहंकार की पराधीनता टूट जाना ही तो स्वाधीनता पा लेना है, लेकिन ये मन जब तक अहंकारी रहता है झुकता नहीं है, कहता झुकोगे तो पराधीन हो जाओगे, और ये नहीं कहता कि इस अहंकार से कितने पराधीन हो गए। ऐसे मन को संभालना पड़ेगा। दूसरा उपाय है कि मन गड़बड़ाए तो मन को संभाल दें। पहला उपाय तो समर्पित कर दें, मन को संभाल लें। मन को संभालें कैसे? मन तो संभला हुआ है भैया, उपद्रव कौन करता है? कौन करता है उपद्रव? मन तो क्षण भर में संभल जाए लेकिन हमारी अपनी अज्ञानता जो उसके साथ जुड़ी हुई है, क्या हम उस अज्ञानता को, उस अभ्यास को दूर नहीं कर पाएंगे? जो संस्कार हमारे मन पे पड़े हुए हैं, जो हमने अपने मन को संस्कारित कर लिया है, अनादिकाल से संस्कार दिया है, वो भी बेचारा क्या करे, हमने तो संस्कारित किया उसके लिए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मन हमारा बड़ा चालाक है, मन बड़ा चंचल है और मन हमारी मानता नहीं है। इस मन को चंचलता किसने सिखाई है? मैंने ही तो सिखाई है। इस संस्कार को तोड़ना पड़ेगा, मुझे इस अभ्यास को तोड़ना पड़ेगा मन के, ये जो यहां से वहां भागता है, मुझे उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। मन पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? उसे विभिन्न प्रकार के संकल्पों में डालना पड़ेगा। संकल्प से तो मना बना मन घबराता है, रात में खाएंगे नहीं लेकिन सोगम ले लेंगे, कैसे ले सकते हैं? वो मन भीतर बैठा हुआ, वो कहता कि ले मत लेना, नहीं तो मैं तो बोल पकड़ा जाऊंगा। मैं इसको जितना जितना पकड़ने की कोशिश करो, उतनी ही सटकता है हाथ से और बहुत सारे लॉजिक देता है, बहुत सारे तर्क देता है, कुछ करने नहीं देता है। तो इसको बांधने का दूसरा उपाय है कि छोटे छोटे से संकल्प में डाल देना है इसको। अगर समर्पित नहीं होता है, थोड़ा बहुत समर्पित होता है तो थोड़े संकल्प में डालना, संकल्प का अभ्यास करना, ताकि ये मन थोड़ा सा हाथ में आ जाए। मन को दबाने की भर कोशिश नहीं करना, दबाने और अभ्यासित करने में दोनों में बहुत फर्क है। मन को एक डायरेक्शन दी जा सकती, मन को एक अच्छा अभ्यास दिया जा सकता है। बार बार अपन क्या करते हैं, ये हर बार बैठ करके इसको अभ्यास ही तो देते हैं। मुझे मालूम है कि यहां से बाहर निकलने के बाद वो जो अभ्यास है जिन चीजों का, वो फिर से जागृत हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए है, उस बहुत बड़ा साधु है वो मन, चलो बैठे रहो थोड़ी देर और बैठे रहो, बजे बज गए जैसे 10 बज गए, सब जो है बिल्कुल छूटने के लिए तैयार बैठा होगा वो एक एक क्षण के लिए। इसे हमने संकल्प में डाल दिया है कि देखो जब तक प्रवचन पूरे नहीं हो जाए जब तक हम नहीं उठेंगे यहां, वो तो परिवार कैसे होगा, होगा कि कर क्या रहे हो, हम तो कह रहे थे कि हम 10 बजे वापस आ जाएंगे, ऐसा है ये मन। इसलिए इसके लिए कोई ना कोई छोटे छोटे संकल्प में भी डालना, समर्पण पूर्वक संकल्प करना तो और अच्छा रहेगा, वरना ये मन अकेले संकल्प में पढ़ करके भी उतावला होकर संकल्प को तोड़ देता है। इसलिए किसी के चरणों में संकल्प लेना, ताकि समर्पित होकर उड़ जाए संकल्प, ये मन जल्दी नहीं तोड़ पाएगा। और इस मन को संकल्प का अभ्यास देना, छोटा सा संकल्प लेके, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, नहीं, और उसको आगे बढ़ाना, बहुत कीमती है अभ्यास। अगर आपने किसी अच्छी चीज का अभ्यास कर लिया है तो मानिएगा कि आप बुरी चीज नहीं कर पाएंगे, और अगर बुरे का अभ्यास है तो बहुत मुश्किल है कि आप अच्छा कर पाएंगे। और यही हमारे साथ हुआ है, इतना इतना प्रगाढ़ हमारा संस्कार है बुरा करने का कि बुरा हमसे सहज हो जाता है। सताई सत्य बोलने के लिए 3 दफे सोचना पड़ता, झूठ बोलने के लिए तो कब बोल देते हैं पता भी नहीं रहता, पाप करने के लिए हमें पता तक नहीं लगता और हमारे द्वारा पाप हो जाता है, और धर्म करने के लिए इतना मन बनाना पड़ता है, इतना 4 बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाकर के मन को बहुत समझा समझा करके थोड़ा सा। इसलिए आवश्यक है अभ्यास। मुझे एक घटना याद आती है, एक व्यक्ति सर्कस में काम करता था और वो अपने जीवन साथी को उस सर्कस में क्या दिखाता था, एक खेल दिखाता था। वो एक तख्ते पर उसे खड़े कर देता था और उस पर तीर चलाता था, बहुत दूर से तीर चलाता था। इतना अभ्यस्त हो गया था कि कोई भी तीर टकराता नहीं था उससे, बाजू में लग जाता था, बिल्कुल ऐसे बाजू में जाकर के लग जाए, एकदम ऐसा निशाना लगाएगा कि माथे में लगता है, लोग देखते कि गया गया वो, और यहां लग जाता था माथे के। चारों तरफ वो अपने जीवन साथी को तीरों से घेर देता था, लेकिन एक भी तीर कभी तो नहीं चूका उसकी जिंदगी में कि उसको लग गया। इतना इतना प्रगाढ़ अभ्यास हो गया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जीवन साथी से बड़ा झगड़ा हो गया घर में, और झगड़े की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई कि उसने मन में संकल्प कर लिया कि आज तो खेल दिखाऊंगा और खेल आज तो खेल ही पूरा कर दूंगा, इतना बड़ा खेल खेलूंगा मैं आज। ये मन बहुत होशियार है, जो जिंदगी भर पैर दबाता रहा हो उसको धन्यवाद नहीं देता, और एक आध दिन चूक चूक जाए तो उसी पैर को मारने तैयार हो जाता है।
कैसा है ये मन? प्यासा ही सोच लिया उसने कि आज तो खेल दिखाऊंगा तो वाकई खेल ही कर दूंगा मैं। और जैसे ही वो तो निडर होकर के निश्चिंत होकर के पूरे विश्वास के साथ उसकी जीवन साथी, वो तो भूल गई थी कि कोई झगड़ा हुआ था, इसके भीतर कषाय थी। लेकिन कषाय भी कितना काम कर पाएगी, जो संकल्पवान है, जो संकल्प का अभ्यासी है उसको कषाय ज्यादा नहीं कर पाती, छेड़ नहीं पाती। जिसको संस्कार अच्छा करने का है उसको बुराइयां ज्यादा नहीं घेर पाती हैं, ये ध्यान रखना। और वो सामने पहुंचा और उसने बहुत कोशिश करी, उसने लिखा अपने संस्मरण में कि मैंने उस दिन बहुत कोशिश करी कि मैं निशाना चूक जाऊं, धोखे से ही सही, जानबूझ करके भी मैंने कोशिश की तो न धोखे से चूका न जानबूझ के चूका। जो तीर फेंकता था वो आजू बाजू ही लगता था, एक भी तीर तो नहीं लगा, सौ सौ तीर चलाए होंगे जानबूझ के, क्यों अभ्यास था। ऐसा अभ्यास हमारे जीवन में भी अगर हम इस मन के लिए दें, अच्छाइयां करने का अभ्यास दें। अभी मैं सुन रहा था रोज एक अच्छा काम करने का, क्या कोई हम अभ्यास डालेंगे क्या? रोज एक अच्छा काम करेंगे, बहुत सारे अच्छे काम हो सकते लेकिन एक आदत डालेंगे कि हम तो रोज एक अच्छा काम करेंगे और उसे लिख करके रखेंगे कि आज मैंने ये अच्छा काम किया। अपने को साबासी देंगे कि चलो हजारों कामों के बीच में एक अच्छा काम करने की फुर्सत तो मिली, अभ्यास तो बनेगा आगामी जीवन के लिए, अभ्यास बनेगा एक काम का, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ये। लेकिन अगर हमारी ऐसी संकल्प शक्ति हो तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन देती हैं। और दूसरी चीज, अच्छाई को कल पर नहीं डालना, और अच्छाई को कोई अगर करता है तो उसे स्वीकार कर लेना, उसमें नीच नहीं करना, ये नहीं स्वार्थ नहीं देखना कि कोई मेरे प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं इसका स्वार्थ हो। यह हमारा मन बहुत ऐसा ही है, दूसरा अगर सच्ची में भी अच्छा कर रहा हो तो यही कहेगा कि कुछ ना कुछ तो होगा इनका, और हम कर रहे होंगे तो होगा भी हमारा, तो भी हम ये प्रस्तुत करेंगे हमारा ऐसा कुछ, हम तो बहुत निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और दूसरे का मन अगर हमारे प्रति निस्वार्थ होगा तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो जब भी अच्छा करने का मन हो कल पर नहीं डालना, झूठ बोलने का मन हो तो सोच लेना कि संध्या को बोल लेंगे, अब अभी क्या जल्दी क्या है, संध्या को बोल लेंगे झूठ, कल बोल लेंगे झूठ, बहुत पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। लेकिन जब कभी सच बोलने का मन हो तो ये नहीं कहना कि बाद में बोलूंगा, अभी बोल लेता। बहुत बड़ा मार्क ट्वेन बहुत बड़ा राइटर था, उसने अपने जीवन का संस्मरण लिखा कि जब वो एक दिन चर्च में बहुत मुश्किल से एक उपदेशक आए थे उनको सुनने गया तो उपदेश से बड़ा प्रभावित हुआ, और वो दान पर उपदेश कर रहे थे तो मार्क ट्वेन ने लिखा कि दान पर उपदेश सुनते सुनते 5 मिनट में मेरे मन में हुआ कि $50 डोनेट कर दूंगा। और जैसे ही मेरे मन में $50 डोनेट करने की आई, इस मन ने मुझे घेरना शुरू किया और अब जो प्रवचन था वो तो सुनना बंद हो गया, ये $50 मेरे मन में बहुत भारी लगे कि इतने ज्यादा की क्या आवश्यकता। वहीं बैठे बैठे 25 ठीक है, 25 में भी काम चल जाएगा, क्या फर्क। फिर थोड़ी देर और हुई, 2-3 मिनट और गुजरे होंगे और 10 तो आए, 10 तो दे ही देंगे। अब प्रवचन तो चल रहा है, प्रवचन ही सुनाई पड़ रहा है, $10, 10 भी बहुत होते हैं, कितना मुश्किल, क्या करेंगे ये लोग, सब बेईमानी करते हैं, बर्बाद कर देंगे, 10 भी बहुत, $1 दे दो, एक तो जरूर दे दूंगा मैं जाते जाते। और मार्क ट्वेन ने लिखा कि इससे पहले कि वो जो मांगने वाला है दान वो पास में आए, मैं उठ के बाहर निकल गया, क्योंकि मेरे मन में आया था कि जब $1 मैं उसमें डालूंगा तो 2 निकाल के पॉकेट में रख लूंगा। अठन्नी डाल करके वो देख ही नहीं पाऊंगा, अठन्नी डाली, वो सोचेगा रुपया डाला था और 75 पैसे उठा लेंगे उसमें। ऐसा मन है, इसलिए अगर मन में आ जावे कोई अच्छा काम तो तुरंत जो है कर लेना, टालना नहीं अगले क्षण के लिए भी। ये वर्धमान चारित्र वाले लोग नहीं है हम कि आज अच्छा विचार आया है तो कल इससे और अच्छा आएगा, यहां तो ही मान है आज अच्छा आया है तो कल उससे ज्यादा घटिया आने वाला है, उससे भी ज्यादा घटिया कल परसों आने वाला है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि अच्छे का संस्कार डालना, और रोज रोज डालना, ताकि वो संस्कार आगे आगे बढ़ता चला जावे और जल्दी से हम अपने मन को संस्कारित करके इन संसार के प्रपंचों से बच सके। और आखिरी बात, किसी के द्वारा किए गए अपने लिए जो अच्छे कार्य हैं उनको निस्वार्थ भाव से स्वीकार कर लेना। बहुत मुश्किल है, मन किसी के अच्छे को स्वीकार नहीं कर पाता है। किसी की प्रशंसा कोई दो लोग कर रहे होंगे तो तीसरा बिल्कुल नहीं खड़ा होगा, और दो लोग अगर किसी की छीटा कसी कर रहे होंगे, निंदा कर रहे होंगे तो बहुत जल्दी सुनेगा। कब अरे हम पेड़ से आ रहे तुम खुद बेटे ऐसे ही है, देखा देखा उसके आए ना, बाकी तो भीतर तो सब ऐसे ही है। हाँ, बहुत जल्दी ऐसा हमारा मन बहुत ऐसा रहता है, निंदा में बहुत आसानी मांगता है, निंदा में बहुत आनंद लेता है वो। इसलिए अगर कहीं किसी की प्रशंसा करने का मन हो जाए, कभी कोई अच्छा करता हो तो उसकी अच्छाई को स्वीकार कर लेना, और उसकी अच्छाई के साथ अगर कभी वो चूक जाए, एक आध गलती भी कर बैठा तो उसे भी चुपचाप स्वीकार कर लेना, क्योंकि हर आदमी यहां चूक सकता है। कोई अच्छा करने वाला भी चूक सकता है, बुरा करने वाला चूक जाए तो अच्छा कर सकता है, अच्छा करने वाला चूकेगा तो क्या करेगा, बुरा हो सकता उसके द्वारा, पर स्वीकार कर लेना। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं और आज अपन इस मन को कोई दिशा देंगे, इस मन को कोई अभ्यास देंगे, अच्छा करने का अभ्यास, और जल्दी से अच्छा करने का अभ्यास देंगे। क्योंकि अगर इस मन को हमने नहीं संभाला तो शायद ये हमारी दुर्गति ही करेगा। इससे अब हमें ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए कि ये मन हमें यहां से पार ले जाएगा। ये तभी पार ले जाएगा जबकि हमारी लगाम इसके ऊपर होगी, हम इसे अनुशासित करके रखेंगे, तभी ये हमारे जीवन को कुछ प्रगति दे पाएगा। आज मैं देखता हूं कि इस मन के चलाए कितने लोग चल रहे हैं, जैसा ये कह देता है वैसा कर लेते हैं, जैसा संस्कार निर्मित होता चला जाता वैसा वैसा करते जाते हैं। ऊपर सतह पर थोड़ा बहुत हम कुछ अपने कल्याण की बात सोचते भी हैं, पर डेप्थ में जाकर के गहराई में तो वही सब संस्कार पड़े हुए हैं, और अंततः वो वासना में, अंततः वो कामना में लेकर के जाते हैं, और सारा किया कराया व्यर्थ कर देते हैं। जैसे कि गज स्नान है, हाथी ने नहाया और ढेर सारी धूल डाल ली, यहां पर 10 मिनट बैठ करके उस मन को भगवान के चरणों में लगाया, बाहर निकले निकले नहीं, और संसार में उसने शुरू कर दिया, अपना प्रपंच फैलाना शुरू कर दिया। ऐसे मन को ज्यादा से ज्यादा समय तक अच्छे में लगाए रखना, कोई अच्छा करता हो तो उसे धन्यवाद देना, और अगर उससे कहीं चूक भी हो जाए तब भी उसकी अच्छाइयों की तरफ देख करके। मैं तो सोचता हूं कि अगर व्यक्ति के जीवन की एक अच्छाई को इतना अधिक बढ़ाया जाए कि वहां बुराई को रहने के लिए जगह ही न रह जाए, अगर 100 बातें किसी के भीतर है, 99 बुरी हैं और एक अच्छी है, तो उसे एक अच्छी को इतना फैला दिया जाए कि उन 99 को रहने की जगह ना मिले, ऐसा हम कर सकते हैं दूसरे के और अपने दोनों के। राजा था एक, उसका एक बहुत प्यारा नौकर था। नौकर और प्यारा हो बहुत कठिन होता, पर मेरी कहानी में ऐसा है। नौकर किसी को प्यारा तब तक लगता है जब तक कि दौड़ दौड़ के काम कर देता, जिस दिन सिर्फ पैसा मांगता है और काम में थोड़ी बहुत कारस्तानी करता है तो उस दिन बाहर निकालने का मन हो जाता है। बहुत प्यारा नौकर था, ऐसा कि जैसे फैमिली मेंबर हो, घर का ही सदस्य हो। एक दिन राजा घूमने गया तो वो उसके साथ छाया की तरह था जंगल में। बहुत भूख लगी राजा को, कुछ भी नहीं मिला, दोनों खोज रहे थे कि कुछ मिल जाता खाने के लिए। अचानक एक वृक्ष पर एक फल दिखाई पड़ा, दोनों उस वृक्ष के नीचे पहुंचे, फल तोड़ा गया, पर उस नौकर का एक काम था, वो अपने राजा को पहले नहीं खाने देता था, कहता था पहले मैं खाऊंगा। और राजा भी ऐसा था कि वो सोचता था कि ये तो मेरा अपना प्यारा सा नौकर है, इसको खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूं। दोनों को भारी भूख लगी थी, और जैसे ही वो फल आया, राजा ने उसे बनाया और एक उसकी फांक उसकी तरफ बढ़ा दी, उसने बड़े शौक से उसको खाया। और जैसे ही राजा दूसरी फांक खुद खाने को हुआ, उसने फिर हाथ बढ़ा दिया। राजा ने सोचा कि मेरा इतना प्यारा नौकर ज्यादा भूखा है, मैं तो फिर खा लूंगा, एक और दे देता, एक और उसको दे दी। वो भी उसने खा ली, और जब तीसरी फांक बना करके खुद खाने को हुआ तो फिर उसने हाथ बढ़ा दिया। अब तो राजा एक बार सोच में पड़ गया, मेरा ये नौकर है तो बहुत प्यारा, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं करता था, थोड़ा सा मैं देता था तो उपकार मान के खा लेता था कि हुजूर आप पहले खाइएगा, अब तो कह रहा है कि और दे दो तीसरी भी, अब दो तो बची हुई है। चलो कोई बात नहीं, एक मैं खा लूंगा, इसको एक और दे देता हूं। एक और दे दी उसको, उसने वो भी खा ली, कुछ नहीं बोला। और जब चौथी वाली बची तो अब तो राजा ने बिना कुछ कहे जैसे मुंह में खाने को हुआ, और अब की बार तो उसने छपट करके उस चौथे वाले को भी हाथ से छीनना चाहा, तो राजा तेज में आ गया। उसने कहा कि तू ऐसा मेरा नौकर ऐसा व्यवहार करता है, कितना भूखा हूं मैं जान रहा हूं तू भी भूखा है, लेकिन तू तीन खा चुका, मेरे को एक भी नहीं खाने देगा, इतना स्वार्थी। अब वो नौकर कहे तो क्या कहे, राजा ने जैसे ही वो फल की फांक टच की थी अकेले जिह्वा में, और इतनी विषाक्त इतनी कड़वी लगी कि वहीं पर नीचे छोड़ दी, और दोनों आंखों से आंसू आने लगे, और उसने उस नौकर से कहा कि क्यों तुमने कुछ भी नहीं कहा, इतनी कड़वी और इतनी विषाक्त थी, तुम खाते चले गए, तुमने मना भी नहीं किया कि अब रहने दो। उस नौकर ने सिर्फ यही कहा कि कल तक जिसके हाथ से अमृत पान करता रहा, आज अगर उसके हाथ से बिस भी खा लूंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा। ये मन को मारना कहलाता है। जिसे मन को मारना नहीं आता, जिसे दूसरों को रास्ता देना नहीं आता, वे अपनी जीवन का आनंद कभी नहीं पा सकते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो उसे स्वीकार करिएगा, उसे स्वीकार करके उसकी अच्छाइयों का सम्मान करिएगा। उसके मन की इस अच्छाई का सम्मान अगर आप करेंगे
की। श्री चंदन सागर जी महाराज की घनघोर बियाबान जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पर्वत के शिखर को छू रहे हैं। सूर्य का दर्शन करके पृथ्वी तल को प्रकाशित कर रहे हो, हिंसक जानवरों की आवाज चारों तरफ से आ रही हो, ऐसे जंगल के बीच से गुजरने वाला कोई साधु की हो सकता है जो निर्भय होकर के उन रास्तों से चला जाता है। आत्मकल्याण का रास्ता निर्भय होकर के चलने वाला रास्ता है, जहां पर संदेह, जहां पर भीति होती है, मार्ग वहां पर अवरुद्ध हो जाता है। आत्म साधना का मार्ग तो निर्भयता का मार्ग है, और ऐसे इस भयावह जंगल के बीच से एक साधक चले जा रहे हैं। रास्ते से गुजरते गुजरते शाम होने को थी, उससे पूर्व रात्रि विश्राम के लिए स्थान चाहिए। रात्रि में नहीं चलना है, कारण कि यात्रा अंधेरे में नहीं होती है, यात्रा तो प्रकाश में ही हुआ करती है। जो अंधेरे में रहते हैं उनकी यात्रा कभी पूरी नहीं होती, जो प्रकाश में चलते हैं वो अपनी मंजिल को पा जाते हैं। लगता है इसलिए आत्म साधक अंधेरे में यात्रा नहीं करता, सूर्य प्रकाश में ही यात्रा करता है, और सूर्य ढलने से पहले पहाड़ की तलहटी में, जो कि प्राकृतिक बने हुए स्थान, वहां जाकर के विराजमान हो गए। वैसे किसी के हसाना, किसी के मकान में प्रवेश करना बिना आज्ञा के नहीं हो सकता है, बिना पूछे किसी के स्थान में बैठ जाना इस साधक का काम नहीं है। इसलिए लगता है कि जब आप परिवहन करते हैं और अपने दरवाजे पर ले जाते हैं, जब तक आप नहीं कहते हैं कि आइए महाराज जी गृह प्रवेश कीजिए, तब तक महाराज जी बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि आपके घर में बिना पूछे प्रवेश करना साधक के लिए उचित नहीं है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं जिन पर किसी का कोई आधिपत्य नहीं होता है, वहां कोई स्वामी नहीं हुआ करता है। जहां तक स्वामी की बात है, अनुमति वहीं तक है, जो सबके लिए होते हैं, यहां तक कि प्राणी मात्र के लिए रहते हैं, ऐसे स्थानों पर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, और वो आत्म साधक ऐसे स्थान पर विराजमान हो गया। सूर्य ढलने से पहले अंधेरी आए, उससे पूर्व वो अपने आत्मज्ञान के प्रकाश में विचरण करने लगे। बाहरी यात्रा को रोक करके प्रतिमा रूप धारण करके आंतरिक यात्रा प्रारंभ हो गई, आत्मा के चिंतन में मनन हो गए, जो सब कुछ रोक देता है, जिसका सब कुछ रुक जाता है, वही अपने आत्मा के निकट तक पहुंच पाता है, वही अपने अंदर तक की यात्रा कर सकता है, और आत्मा से प्रकट होने वाला जो आनंद है उसका लाभ ले सकता है। हमारे आचार्य ने ऐसे ही आत्मचिंतन के कुछ सूत्र हमें दिए हैं। एको हम निर्मला शुद्धो ज्ञानी योगी मृगोचरा बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि स पर्व था। एक मैं ही हूं जो कैसा हूं मुर्गा, मारू से रहत बाहरी अटैचमेंट से बिल्कुल पृथक, मुझे के अभाव में निर्मलता को प्राप्त होने वाला, जो कि यह आत्मा शब्द मात्र ज्ञानियों के गोचर है, जिसे इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उन इंद्रियों से अतीत कोई योगींद्र, कोई योगियों में कोई प्रज्ञान, ऐसा कोई साधक ही आत्म साधन में उतरता है तो उसका अनुभव करता है। और इसके अलावा जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी हो रहा है, वह सब वाही है, वह मेरा नहीं है, वह मैं नहीं हूं। इस तरह ये चीत निज में फिर वही तिन अकथ जो आनंद न हो, इस तरह अपनी आत्मा के स्वरूप में रमन हो जाते हैं, इस तरह की विचारधारा में डूब जाते हैं। अभी हम सब अनुप्रेक्षा पर सुन रहे हैं प्रतिदिन। अनुप्रेक्षा ये तो सिखाती है कि हम उस चिंतन के माध्यम से अपने निकट पहुंच जाते हैं और अपने आप में उतर जाते हैं। फिर क्या होता है, आत्मा के अंदर से आनंद के झरने झरने लगते हैं, फूट पड़ते हैं। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विरोधी नहीं है। आनंद शाश्वत होता है, आनंद पर की अपेक्षा से रहित होता है। संसार में और बहुत सारी परिणतियां हैं जो सापेक्षता को लिए होते हैं। सुख है तो दुख उसका विरोधी है, संसार है तो उसका विरोधी मोक्ष है, गर्मी में तो ठंड है, शत्रु में तो मित्र है, ऐसे कितने हैं जिनके एक दूसरे के विरोधी हैं। रति है तो अरति है, सुख है तो हर्ष है, हर्ष है तो विषाद है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विरोधी नहीं है। कारण कि वह शाश्वत है, अपने में परिपूर्ण है, अपने से होता है और अपने को ही तो आनंद देता है, इसलिए पर से निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं रखता आनंद। लेकिन वह तभी आ सकता है जब अपने आत्मा में उतर जाते हैं, जब अपने चिंतन में डूब जाते हैं, बाहरी प्रवृत्ति हमें बाहर दिखने लगती है, यहां तक कि बाहर का ध्यान भी नहीं रहता है, अपने मात्र एक ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा का अवलंबन हो जाता है। वही आनंद की किरण, वही आनंद का झरना फूटता है और साधक अपने आनंद में लीन हो जाता है। और ऐसा लीन होने वाला यह आनंद किसी को नहीं आता है, सुरेंद्र नाग नरेंद्र या अहमेंद्र के नहीं कहो। संसार में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े पोस्ट हैं, लेकिन उस पर रहने वाले व्यक्तियों को भी आत्मा का आनंद नहीं आ सकता है। कारण कि यह सब बाहर है, यह सब किसी अपेक्षा से है, कहीं ना कहीं कर्म का उदय सापेक्ष है इनमें, कि जिनकी वजह से अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन आत्मा की अवस्था, आनंद की अवस्था कर्म से निरपेक्ष, सबसे निरपेक्ष स्वाश्रित है। इसलिए ऐसा आनंद किसी को नहीं मिलता है, चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, आनंद हो, कोई भी क्यों ना हो, उसे जो भी मिलता है वो सापेक्ष है, वो कर्म के उदय उपशम जोशम से मिलता होगा, वह कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन यह अनुमाना साधकों को जो आता है वो आनंद अलग ही है। ऐसे आनंद में डूबने वाला व्यक्ति ही संसार से पार हो जाता है, वह साधक भी ऐसे निर्जन स्थान को पाकर के अपने आत्मा में प्रवेश हो गए, लीन हो गए, टूट गए। लेकिन शाम का वक्त होगा, शाम होने को थी, उस सब अपने अपने घरों लौट रहे थे, सारे बसु पक्षी अपने अपने घर की तरफ आ रहे थे। क्या शाम होने से पहले हमें भी अपने घर का स्मरण हमारे प्राणी याद रहे थे। उनमें से भी कोई एक ऐसा ऐसा व्यक्तित्व का धनी एक प्राणी अपने घर की ओर लौटा। घर आते ही देखता है कि वहां तो कुछ और ही है, अब वो घर खाली गए हैं। घर में तो पहले से कोई विराजमान है और वो विराजमान कोई सामान्य सा नहीं है। ऐसा नजर आता है तो दिव्य शक्ति को दिव्य प्रकाश यहां दिखाई दे रहा है कि सारा घर जगमगा उठा है, जिसके ही प्रार्थना होने से कोई यहां का बंदोबस्त हो सकता है या कोई परमात्मा उतर के आ गया होगा यहां पर। लेकिन मेरे घर आया है तो मेरा कर्तव्य है कि आए हुए व्यक्ति का मुझे स्वागत करना चाहेंगे। आज कर्तव्य की बात आती है तो हम दुमत हो जाते हैं, कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, कारण कि हमें कर्तव्य का सम्यक बोध नहीं होगा है। अभी जब तक कर्तव्य का सम्यक बोध नहीं होगा तब तक शायद हम कर्तव्य को नहीं निभा पाएंगे, तब तक हम कर्तव्य से विमुख ही होते रहेंगे, हमारी दिशा बिल्कुल विपरीत नहीं होगी। लेकिन एक बोध है जिसे अपने कर्तव्य का बोध है, जो समझ रहे हैं कि आए हुए अतिथि का मुझे स्वागत करना चाहिए। आपने भी ऐसा ही कुछ कर रखा है, मानो ऐसा कुछ आयोजन रखा है कि आए हुए अतिथि का हम स्वागत करेंगे। लेकिन स्वागत करने करने के तरीके अपने अलग होते हैं। आप क्या स्वागत करेंगे? आने वाले अतिथि को भोजन कराएंगे और होगा तो कहीं बैठने के लिए स्थान दे देंगे, उसकी कुशलक्षेम पूछ लेंगे, आपका स्वागत हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा प्राणी, एक भव्य आत्मा का एक साधक का स्वागत करने जा रहा है जो स्वागत से अतीत हो चुका है, उसका स्वागत जिसे कोई स्तुति और निंदा में हर्ष और विषाद नहीं होता है, जो समत्व में डूब गया है उसका स्वागत किया जा रहा है, उसके स्वागत की विधि तो कुछ अलग ही हो सकती है। ये चाहता है प्रे लेकर के स्वागत वाली विधि नहीं, आपके घर में चल सकती है, आपके अतिथियों का स्वागत हो सकता है, लेकिन इस अतिथि का स्वागत तो कुछ अपूर्व ढंग का स्वागत है। और स्वागत में बैठ गया है, आए हुए के लिए मुझे स्थान देना चाहेंगे और स्थान दे दिया गया है। और इसी बीच अचानक सामने से कुछ देखा और कुछ इस तरह का दिख रहा था जिसे देखते ही आदमी घबरा जाता है, जिसको देखते ही आदमी चौपड़ी भर करके दौड़ने लगता है अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए कि अब खतरे में है। ऐसा लग रहा है देख करके ऐसे कोई काल आ रहा हो। और यह प्राणी जो आवास के लिए बैठा है, जो स्वागत के लिए अपने द्वार पर बैठ गया है अतिथि के स्वागत के लिए, वो वहीं से आवाज देता है, खबरदार यदि आने वाले वापस लौट जाए यहां से। लेकिन आने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो अपने आप में एक व्यक्तित्व का धनी था। वो सोच रहा ये आवाज को सुनकर के वो पहली बार ऐसी आवाज सुनी इस जंगल के बीच, आप तक किसी ने ऐसी आवाज नहीं रखी, आप तक मेरे मार्ग को किसी ने रोका नहीं है। एक कौन सा प्राणी यहां गया जिसने मेरे मार्ग को रोक दिया है? वो कह रहा है कि ठहर जाओ, क्या जानता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं इस जंगल का राजा हूं, मेरी आज्ञा के बगैर मैं पत्ता भी नहीं मिल सकता है। मुझे रोकने वाला कौन है? मैं स्वतंत्र और सुसंग सहन करने वाला प्राणी हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और प्राणी बनने लगा। दूसरी बार पुनः गर्जना हुई, खबरदार जो आने वाले ठीक नहीं होगा, वापस चले जाओ, ये तो बहुत बड़ा अपमान था। किसी राजा से कह दिया जाए कि आप यहां से नहीं निकल सकते एक बार और दो बार, तो राजा का बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। और राजा तो राजाएं होगा करके बड़े सनकी होते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और फिर उन्हें ध्यान नहीं रहता है हेतु राहत का कि क्या करने जा रहे हैं। बर्बाद बाल है, उसके पहले उसके ऊपर वार कर देगा और दोनों एक दूसरे लड़ने लगे हैं। दोनों युद्ध होने लगा, घनाशाल युद्ध चालू हो गया है। देखने वाला देख रहा है, किसे देख रहा है? जिसे देखना चाहिए उसे देख रहा है। बाहर में क्या हो रहा है इसकी कोई आभास भी नहीं है इसका। देख रहा है अपने आत्म तत्व को, ज्ञाता और दृष्टा की तरह है, अपने दर्शन और ज्ञान का उपयोग करने वाला। बाहर में बहुत कुछ घटित हो रहा है, यदि यहां पर हम होते तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते, हो सकता है भयभीत हो जाते, भागने लगते, या फिर उनकी इस क्रिया को देख करके निर्णय कहने लगते कि अब इनमें से जीत किसकी होगी, कौन जीतेगा यहां पर। और इस तरह दोनों लड़ाई आपस में है, एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं, इस वास्ते कि मेरे मार्ग को इसने रोका है, इसलिए इसका बदला मुझे लेना है। और दूसरा यह सिद्धे से कह रहा है कि मेरी बात नहीं इसने मानी, मैं स्वागत के लिए यहां बैठा था, मैं आवाज देने के लिए बैठा था, और मेरा कर्तव्य है कि सुरक्षा देना, इसलिए मैं सुरक्षा की दृष्टि से यहां से उठ नहीं सकता हूं, यहां को इनका बाल वादा नहीं कर सकता, मेरे रहते हुए कोई अंदर प्रवेश कर जाए संभव नहीं है। और बेसुद्धि से लड़ रहा है, आयुर्वेद के लिए स्वागत आवास और आवास ही मात्र पर्याप्त नहीं होता है, उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। आप हम बुला लेते हैं अतिथियों को और स्वागत कर देते हैं, लेकिन सुरक्षा का भाव नहीं रहता। आवास दे देते हैं लेकिन सुरक्षा का भाव नहीं रहता, तो आपकी बात कैसी कटेगी? आपके लिए इसमें क्या सुविधा होगी? इसकी कोई परवाह नहीं होती है। हमारा स्वागत नहीं है, ये अधूरा स्वागत है। लेकिन पूरा स्वागत करने वाला वो भव्य प्राणी चला गया है, लड़ रहा है। लड़ते झगड़ते दोनों घायल हो गए हैं, और अचानक जो यहां पर स्वच्छ बैठा होगा तो उसने एक ऐसा वार किया कि सामने वाला जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। लेकिन तेरी इतना घायल हो गया था, ये भी जमीन पर अचेत हो गया। दोनों मानसिक अवस्था में हैं, दोनों अंतिम समय में हैं, कोई नई यात्रा उनकी प्रारंभ होने वाली है। यहां से देखने वाला देख सकता है दोनों की क्रियाओं को, लेकिन उनके अंदर कुछ न्याय घटित हो रहा है। कारण एक विरोधी था, एक विरोध को मिटाने वाला था, एक विरोधी था, एक विरोध को मिटाने वाला, एक रक्षक था, एक रक्षक है। जो विरोधी होगा उसके परिणाम कैसे होंगे? जो रक्षक होगा उसके परिणाम कैसे होंगे? जो विरोध को मिटाने वाला होगा, सुरक्षा देने वाला होगा, जो रक्षक होगा उसके परिणाम बड़ा अंतर होगा। जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक आर्थ ग्रहण और रोग ग्रहण के कारण से अपने प्राणों को छोड़ रहा है, और एक धर्म ग्रहण के माध्यम से अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहा है। दोनों की क्रियाओं में बड़ा अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी का जीवन, ज्ञानी और अज्ञानी के बाह्य आचरण एक से दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर का उद्देश्य बड़ा अलग होगा करता है, बड़ा अंतर होता है दोनों में। दोनों को लड़ती में देख करके आप कह सकते हैं कि दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों क्रोध में हैं, दोनों हिंसक हैं, और इनके लिए अधोगति मिलनी चाहिए। लेकिन होता बड़ा विचित्र है। बाहरी के एक्शन समान होते हुए भी अंदर की जो परिणति है, अंदर के जो परिणाम है, वो भिन्न भिन्न होते हैं। बाहर में पूजा करने वाले दो व्यक्ति एक साथ एक जैसी पूजा कर सकते हैं, बाहर में दो व्यक्ति एक जैसा आचरण कर सकते हैं, लेकिन भीतर में उनके परिणाम उस क्रिया से कितने जुड़े हैं, किसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन को लिए उनके परिणामों के अनुसार ही तो फल मिलता है। हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं इसका निर्णय हमें करना पड़ता है कि ऐसा निर्णय होता है। बाहरी क्रिया से कहा जा सकता है की पगान ऐसे, लेकिन जरूरी नहीं है। वो क्रिया हो सकता है उसे मजबूरन करनी पड़ रही हो किसी उद्देश्य की सफलता के लिए, और वो दोनों अंत समय अंत की यात्रा समाप्त करते हैं और नई यात्रा प्रारंभ कर जाते हैं। वहां से दोनों के अंदर में कुछ नया घटित हो जाता है। एक नीचे की यात्रा करता है और एक ऊपर की यात्रा करता है। बड़ा नक्षत्र है परिणामों का। आप पूजा करते हैं तो आपके लिए हो सकता है कि इंद्र और धर्मेंद्र का सुख प्राप्त हो जाए, एक दूसरा पूजा कर सकता है, हो सकता है उसके लिए मनुष्य का भी सुख प्राप्त नहीं हो। कारण कि एक कर्म यदि परमार्थ को लेकर के किया जा रहा है तो परमार्थ सत्यता है, और एक को स्वार्थ लेकर के किया जा रहा है तो संसार सत्यता है, परमार्थ नहीं सत्यता। यहां पर भी एक के परिणाम परमार्थ को साधने के लिए थे और एक के परिणाम संसार की लोभ और लिप्सा को साधने के लिए थे, स्वार्थ से भरे हुए थे। इसलिए एक नीचे की यात्रा कर रहा है, एक ऊपर की यात्रा कर रहा है, दोनों अलग अलग है। आचार्य प्रवर गौतम महाराज ने अपने ही रायाचार ग्रंथ में एक गाथा सूत्र के माध्यम से इस तरह की हमारी क्रियाओं को, इस तरह के हमारे परिणामों को लेकर के हमें क्या मिलता है ये दर्शा दिया है। सुहादो मिलाओ शुभ भावो दुशब्द सुहाओ शुभ दुम भावम जान दो जनते रुचम रुचे तम पुचा। अशुभ परिणामों के माध्यम से नरकायु प्राप्त होती है, शुभ परिणामों के माध्यम से स्वर्ग अर्थात देहों की आयु प्राप्त होती है, स्वर्ग का देह प्राप्त होता है। शुभ दो भावम जान तो इस तरह शुभ और अशुभ इसे आत्मा के प्राण की दोनों प्रवृत्तियों को जान करके जन्म तो बच्चे तम पुचा, तुम्हें जो कुछ अच्छा लगता है वो करो। आचार्य गंभीर महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? हमें एकदम अच्छा लग रहा है कि हमें स्वर्ग जाना अच्छा लग रहा है, कि संसारी वर्ग में अच्छा लग रहा है, कि मनुष्य जाना अच्छा है, क्या अच्छा लग रहा है हमारे लिए? निर्णय हमें करना है, अपना अपनी यात्रा करना है, अपने मंजन करना है, हमें करना होगा। वहां पर दोनों मर गए, एक अशुभ परिणामों के कारण से मरा इसलिए नरक चला गया, एक शुभ परिणामों के कारण से मरा इसलिए स्वर्ग चला गया है। हम कहां जाना चाहते हैं? हमें अपने परिणामों को संभालना पड़ेगा। हम जहां जाना चाहते हैं परिणामों की तैयारी वैसे वैसे करनी होगी। हमारे धर्म का बड़ा वैचित्र है इस संसार में, धर्म मालूम नहीं हमें क्या क्या दे देता है। आचार्य प्रभाव संत महाराज ने इस तरह धर्म और अधर्म को, दोनों के विभाजन को, दोनों के स्वरूप से मिलने वाले फल को एक श्लोक के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से और उदाहरण देकर के उसमें ही समझा दिया। श्वा पिदो दो पिदो रहस्वा जाओ तो धर्म के साथ का पुनाम भवे धर्म संपद धर्म झरीरिणा। धर्म के माध्यम से कुत्ता भी दो पर्याय को प्राप्त कर लेता है, और अधर्म के माध्यम से, पाप के माध्यम से, आर्त रोगमन के माध्यम से एक देव ही दो गति को छोड़ करके तीन समय कुत्ता की पर्याय प्राप्त कर लेता है। बड़ा महात्मा धर्म है, धर्म का बड़ा औचित्य है इसमें। धर्म के माध्यम से हमारी आत्मा का विकास होता है, हमारी आत्मा का इंद्रगमन होता है, और अधर्म के माध्यम से आत्मा का ह्रास होता है, पतन होता है और अधोगमन होता है। हम क्या करना चाहते हैं? अपनी आत्मा का विकास करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, तो हमें धर्म की शरण लेना होगी। और यदि विनाश करना हो, ह्रास करना हो, पतन करना हो, तब तो अधिकांश लोग उस मार्ग पर चल ही रहे हैं। ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। कैसा चित्र है? आचार्य से सुनाते हैं कई बार कि धर्म और धर्म के प्रभाव से कुत्ता दो होता है, दो कुत्ता मच जाता है। उन्होंने सुनाया था एक बार कि अंग्रेजी में कुत्ते को बोलते हैं डॉग, डीओजे डॉग। डॉग जब धर्म का अनुसरण करता है मन के माध्यम से जीओडी गॉड से डीओजी डॉग बन जाता है। कुछ नहीं है फर्क उतने ही शब्द में, कुछ नहीं है डीओजी डॉग और जीओडी गॉड। आने का पीछे हो जाता है, पीछे का आने हो जाता है। अभिनंदन होता है तो डी हट करके जी लग जाता है, डी पीछे चला जाता है, और जब अधर्म आता है तो आगे डी जी की जगह डी हो जाता है और जी पीछे चला जाता है। जी हमारा धर्म का प्रतीक है, डी अधर्म का प्रतीक है। जी का अर्थात धर्म का अनुसरण करते हैं तो जी ओडी गॉड होता है, और अधर्म का अनुसरण करते हैं तो दो जी डॉग हो जाता है। हमें क्या बनना है, डॉग बनना है या गॉड बनना है? इस समय वर्तमान में मोक्ष तो आपका हमें मिलने वाला नहीं है, इस स्थान से तो आज मिलने वाला भी नहीं है। यदि कुछ पुरुषार्थ करेंगे तो किसी स्थानांतरण होने के बाद में संभव है तैयारी करने से मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जहां हम हैं यहां पर तो हमें संसार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब संसार ही मिलना तो भैया संसार में फिर अच्छा क्यों नहीं चुनते? एक व्यक्ति बाजार गया टमाटर खरीदने, और वहां एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि उसके यहां जो टमाटर थे वो बड़े बेकार से टमाटर थे, और किसी के हाथों में तो सुने वाले टमाटर थे तो ये है लेलेस में से, तो अब सारे टमाटर में से चुनना है तो क्या चुनेगा वो? अब सारे में से चाटता है वो कौन ज्यादा खराब है कौन कम खराब, तो कम खराब डालों के लिए चाट चाट करके लेता है, ज्यादा जो सड़ जाते हैं छोड़ देता है। तो ये यहां पर है ये संसार है, मोक्ष में से दो चुनना था तो मोक्ष तो यहां मिलने वाला है, इस बाजार में नहीं दिख रहा है। और ना तो संसार है तो संसार तो सड़े टमाटर दिख रहा है, अब क्या चुनना चाहते? सड़े टमाटर में से मरा और तुरंत चुनना चाहते हो कि दो गति चुनना चाहते हो? क्या चुनना चाहते हो आप? जहां बैठकर के हम अपने परिणामों को सुधार सकते हैं, वहां की प्रणति वहां के स्थान को वहां के पर्याय को क्यों ना चुने हम? इसलिए हमें अच्छे स्थान को चुनना चाहिए। सड़े टमाटर में से चयन करना है तो कुछ उसमें से अच्छा छांट लीजिए जिससे कि कुछ हमारा सुधार हो सके, कुछ हमारी पूर्ति हो सके। इसलिए हम अपने परिणामों को सुधारने के लिए यहां पर हमें धर्म का अनुसरण करना होगा, और वो भक्त प्राणी उस साधक की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्जन कर देता है। दोनों ने कर दिया था, एक उस साधक को भक्षण करने के लिए आया था और एक वो भव्य आत्मा उस साधक की सुरक्षा के लिए बैठा हुआ था। एक संघ था और दूसरा सूकर था, पशु थे, आवाज दे रहा है पशु, आवाज दान दे रहा है पशु, पशु सुरक्षा दे रहा है, वो दान दे रहा है। अरे मनुष्य जरा पशुओं के इस कार्य को देख करके तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम मनुष्य हैं और हम आवास नहीं दे पा रहे, हम किसी को अभय नहीं दे पा रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे। हमारे पास में रहने वाले भाई थे डर रहे हैं काम पर, अरे कैसे मनुष्य हैं हम? हमारे पास रहने वाले को तो निर्भय मिलना चाहिए, अभय मिलना चाहिए, उसे आवास मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। एक पूछ वाला, एक पशु पूछ वाला होकर के भी इस आवाज सोचता और स्वागत के माध्यम से अपना इंद्रियन कर लेता है, और एक मूछ वाला होकर के भी अपना सुधार नहीं करता।